नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम की पुस्तक में से मरकुस रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको लाभ मिल रहा है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई के विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों।
प्रिय मित्र, आप सबको प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत के अंत के बारे में अपने शिष्यों को बताया कि जगत के अंत के चिन्ह होंगे, कि लड़ाइयां और लड़ाइयां होंगी, जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, भुईडोल होंगे और बहुत प्रकार की घटनाएं घटेंगी और उस समय बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे और कई लोग अपने विश्वास से पीछे मुड़ जाएंगे। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को उससे आगे बढ़ाएं, लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में जाएं, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जिसे आपने हमें दिया है, ताकि प्रभु हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें, अपने जीवन में उस सत्य वचन को ग्रहण कर सकें। प्रभु, जब हम आपके वचन का अध्ययन करते हैं, हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के जो आपके वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, आत्मिक आंखों को, उनके कानों को, उनके हृदय और विचारों को खोल दें, एकाग्रता का मन दें, समझने का ज्ञान दें, ताकि प्रभु जब आपके वचन हम सुने, यह वचन हमारे जीवन में कार्य कर सके, हमसे बातचीत करने पाए। और होने दे पिता परमेश्वर कि हम इस वचन के आधार पर अपने जीवन को चलाने पाए और हमारे जीवन के द्वारा से हम आपको आदर दे सकें। हमारी प्रार्थना है हमारे उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, दुखी और निराश हैं, चिंता और परेशानी में हैं। पिता परमेश्वर, आप उनकी भी सुधि लीजिए, उनकी भी सहायता कीजिए, ताकि वे जाने पाए कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी जरूरतों को समझते हैं। प्रभु, आप उन्हें रोग मुक्त कीजिए, ताकि वे भी आपके जीवित वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर आत्मिक आशीष को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। आज के अध्ययन में आप हमारे सहायक हो, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, यह अध्याय मरकुस के सुसमाचार का सबसे लंबा अध्याय है जिसमें 72 पद हैं। यह अध्याय वास्तव में गतिविधियों से भरा है। इसमें यीशु निष्क्रिय है परंतु अन्य सब सक्रिय हैं, चाहे वे उसके मित्र हों अथवा उसके वैरी। अब उसके पकड़ाए जाने का समय आ गया है। उसकी सांसारिक सेवा भविष्यवाणी के अनुसार पूरी हो गई है। लिखा है, जैसे भेड़ वध होने के समय। मित्रों, वैसे ही वह भी अपने आप को पकड़वाने वालों के हाथ में सौंप देगा। मरियम ने उसका अभिषेक किया, यहूदा ने उसे पकड़वाया, परंतु पतरस ने उसका इनकार किया और महासभा ने उसे बंदी बनाया। यीशु ने अपने आप को पिता की इच्छा पर छोड़ दिया था। मित्रों, क्रूस के निकट आकर हमें समझ में आता है कि हम पवित्र भूमि पर खड़े हैं। गहराइयां और अच्छाइयां नापी नहीं जा सकती, अर्थात नहीं नापी गई। इस समय की गतिविधि में उसकी पीड़ा और संताप है। उसका समय आ गया था। आपको स्मरण होगा कि काना नगर में विवाह उत्सव के समय उसने अपनी माता से कहा था कि उसका समय नहीं आया है, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 2:4 में पढ़ते हैं। अब उसका समय आ गया था। इस अध्याय में और अगले अध्याय में स्वर्ग और नरक का अनोखा मेल है। अंधकार और ज्योति एक साथ एक ही दिशा में अग्रसर हैं। धार्मिकता और पाप दोनों क्रूस की ओर बढ़ रहे हैं, तथा परमेश्वर और शैतान दोनों ने यीशु की क्रूस पर चढ़ाने की ठानी है। व्यक्तिगत निर्णय क्रूस में केंद्रित हो रहे हैं, जैसा आज भी होता है। इस अध्याय की रूपरेखा इस प्रकार से है। पहला, महायाजक और शास्त्री यीशु की हत्या का षड्यंत्र रचते हैं, 1-2 में हम पाते हैं। दूसरा, बैतनिय्याह की मरियम यीशु के सिर पर तेल उंडेलती है, 3-9 में पाते हैं। तीसरा, यहूदा यीशु को पकड़वाने का सौदा करता है, 10-11 में पाते हैं। चौथा यीशु का अंतिम फसा और पहला प्रभु भोज पद 12 से 25 में पाते हैं। पांचवा पत्रस साथ निभाने की शपथ खाता है पद 26 से 31 पद में देखते हैं। और छठवा गतसमनी की वाटिका में यीशु प्रार्थना करता है पद 32 से 42 पद में। सातवां यीशु का पकड़ा जाना पद 43 से 52 पद में। आठवां यीशु महासभा के सामने है पद 53 से 65 में। नौवां पत्रस यीशु का इनकार करता है पद 66 से 72 में। आइए हम मार्कुस 14 उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। दो दिन के बाद फसा और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे क्यों कर छल से पकड़कर मार डालें, परंतु कहते थे कि पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। मित्रों, फसा का पर्व निशान माह का पहला माह के 14वें दिन आता था। हमारे कैलेंडर में यह अप्रैल माह में है। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसा हुआ करे। लय व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय उसके 5 पद में हम इसे पढ़ते हैं। 15वें दिन अखमीरी रोटी का पर्व आता था जो 7 दिन तक चलता था। उसी महीने के 15वें दिन यहोवा के लिए अखमीरी रोटी पर्व हुआ करे, उसमें तुम 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। इसे हम लय व्यवस्था 23 अध्याय के 6 पद में पाते हैं। मित्रों, मेरे विचार में उन 11 शासकों की इच्छा थी कि यीशु को फसा के अंत में पकड़े जब पर्व में आई भीड़ छटने लगे। इसी कारण उन्होंने उसे फसा के समय पकड़ना ना चाहा, अन्यथा जनता में रोष उत्पन्न हो जाता क्योंकि वे यीशु को मान देते थे अर्थात उसका आदर करते थे। उसने रोगियों को चंगा किया था और भीड़ को भोजन कराया था, वे उसे आनंद से सुनते थे। और तब हम मार्कुस 14 के 3 पद में आगे पढ़ते हैं, जब वह बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। मित्रों, यूहन्ना इस घटना को फसा के 6 दिन पूर्व दर्शाता है, जिसे हम यूहन्ना 12 अध्याय के 1 पद में देखते हैं। तो क्या मत्ती और मार्कुस से चूक हुई कि उन्होंने फसा के आरंभ में रखा? जी नहीं, हमें यह नहीं भूलना है कि वे दोनों समय के क्रम में घटनाओं को नहीं रखते हैं। इस घटना को यहां रखने का उनका मुख्य उद्देश्य था कि वे यहूदा की काली करतूत के साथ इसे दर्शाएं। वे अंधकार और ज्योति का विरोध दर्शाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने घटनाओं को इस क्रम में रखा है। मित्र और बैरी दोनों ही क्रूस की ओर अग्रसर हैं, परंतु भिन्न भिन्न मार्गों से। बैतनिया की मरियम ज्योति और प्रेम के मार्ग से आई थी, यहूदा अनुचित एवं अंधकार के अधीन था। यूहन्ना कहता है कि यह मार्था की बहन मरियम थी, जिसे हम यूहन्ना 12 अध्याय उसके 3 पद में पाते हैं। मार्कुस रचित सुसमाचार 14 उसके 4 और 5 पद में आगे लिखा है, परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था, और वे उसको झिड़कने लगे। मित्रों, यूहन्ना के सुसमाचार वृतांत से हमें विदित होता है कि शिकायत का आरंभ करने वाला यहूदा था और दूसरों ने उसका पक्ष लिया। यह तर्क कि उस पैसे से गरीबों की सहायता की जा सकती थी एक बहाना था। यहूदा उस पैसे को अपने स्वार्थ के काम में लेना चाहता था। आज हम मसीही संस्थाओं में इस तर्क की बहुतायत को पाते हैं। यदि वह पैसा यहूदा के हाथ में आ जाता तो आपके विचार में वह क्या करता? हम मार्कुस 14 उसके 6 से 7 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल सदा तुम्हारे साथ रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। यदि वे दिल से सेवा करना चाहते तो अवसरों की कमी नहीं थी। वे उन अवसरों का लाभ उठाकर गरीबों की सेवा कर सकते थे। गरीबों का अंत कभी नहीं होगा जब तक कि यीशु न आ जाए। गरीबी तो एक विषय है, संसार में अनेक अन्य विषय हैं जिनका निवारण आवश्यक है। मार्कुस 14 उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने के लिए तैयारी के पहले मेरे देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। मित्रों, मरियम जो कुछ कर सकती थी उसने किया। परमेश्वर मनुष्य से यही चाहता है। मरियम में जो आत्मिक अंतर्दृष्टि थी वह उस समय शिष्यों में भी नहीं थी। उसने दफन के लिए यीशु का अभ्यंजन किया था। उसने स्पष्ट कर दिया था कि वह जान चुकी थी कि यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान देगा। शिष्यों को इसका बोध नहीं हुआ था। उसके इत्र की सुगंध आज तक वातावरण में व्याप्त है और पवित्र आत्मा उसे एक एक शताब्दी करके आगे लिए चलता है। यीशु के कष्टों को समझने वाली कोई तो वहां पर थी। मित्रों, इन पदों को पढ़ लेना आसान है, परंतु इसका अर्थ समझना और करना हमारी मनोकामना बनी हुई है। क्या हम में से किसी ने यीशु पर इत्र डाला कि हमारे जीवन में सुगंध भर जाए, जो अन्यों के लिए आशीष का कारण बने? यदि कोई अपने इत्र का पात्र तोड़ दे तो वह निश्चय ही गरीबों के लिए आशीषों का कारण होगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या परमेश्वर के जन वास्तव में वह सब कर रहे हैं जो वे कर सकते हैं। मित्रों, आप ध्यान दीजिए कि मरियम के इस ज्योतिर्मय पवन कार्य के समानांतर यीशु को पकड़वाने के लिए यहूदा की योजना का वृतांत है। हम मार्कुस 14 उसके 10 और 11 पद में पढ़ते हैं। तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था महायाजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ में पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपए देना स्वीकार किया और यह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे। मित्रों, यहूदा ने यीशु को पकड़वाने की ठान ली थी, परंतु वह उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा था कि यीशु को पकड़वा दे। यहूना अपने वृतांत में लिखता है कि यीशु ने यहूदा से कहा कि वह शीघ्रता से अपनी योजना पूरी करे। इसे हम यहूना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 27 पद में पाते हैं। और इस पर यहूदा संभवतः तुरंत फरीसियों के पास गया और उन्हें सचेत किया होगा कि यीशु को उनकी योजना का पता चल गया है, अतः वे उसे शीघ्र पकड़ लें, अन्यथा वह नगर से निकल जाएगा। अतः उन्होंने तुरंत सैनिक लिए और उसे पकड़ने चल पड़े। अगले दृश्य में मरकुश यीशु द्वारा फसह की तैयारी को दर्शाता है। मरकुश 14 उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? मित्रों, फसह के भोज में अखमीरी रोटियां खाई जाती थी और अगले 7 दिन तक अखमीरी रोटियां ही खाई जाती थी। निर्गमन की पुस्तक उसके 12 अध्याय और उसके 14-20 पद में हम इसे पाते हैं। शिष्य मूसा की व्यवस्था के अनुसार तैयारियां करना चाहते थे। अब कुछ ही घंटों में यीशु फसह के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला था। तब हम मार्कुस 14 उसके 13 और 14 पद में आगे पढ़ते हैं, उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? मेरे विचार में यह एक और पक्ष है जहां प्रभु यीशु के मनुष्यत्व का प्रदर्शन है। इन पदों से यह भी प्रकट होता है कि यीशु से प्रेम करने वाले वहां थे और फसह के भोज को तैयार करने में उसकी सहायता कर रहे थे। यीशु के सर्वज्ञान का भी यहां प्रगटीकरण है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह घर का स्वामी यीशु का अनुयायी था। मेरे विचार में यीशु इस कमरे में कभी कभी ठहरता था। उस व्यक्ति ने संभवतः यीशु से कहा होगा कि जब वह फसह के लिए यरूशलेम आए तब वह वहां ठहरे और वे उसे उसके लिए तैयार कर देंगे। और मेरे विचार में यह एक अद्भुत सेवा भी थी। हम यीशु की सेवा अनेक प्रकार से कर सकते हैं। उस अनुयायी ने इस रूप में यीशु की सेवा की। मार्कुस 14 उसके 15 और 16 पद में आगे लिखा है, वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। सो चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। मित्रों, यहां ध्यान दीजिए कि फसह का भोज खाने के लिए यीशु ने कमरा मांगा था जो मेरे विचार में समय से पूर्व निश्चित किया गया था। उस घर के स्वामी ने यीशु के लिए उचित प्रबंध तो कर दिया था, परंतु पांव धोने के लिए वह वहां उपस्थित नहीं था। इसमें उसका कोई दोष नहीं था, क्योंकि यीशु ने स्पष्ट कर दिया था कि वह फसा का भोज केवल अपने शिष्यों के साथ अकेले में खाएगा, जिसे हम मार्कुस 14 के 14 पद में पढ़ चुके हैं। मेरे विचार में यीशु ने व्यवस्था पहले से ही कर ली थी। गधी के बच्चे को लाने के लिए भी यीशु ने पहले से ही व्यवस्था कर ली थी। तब हम मार्कुस उसके 14 के 17 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, जब सांझ हुई तो वह बारहों के साथ आया। ध्यान दीजिए कि वह संध्या के समय वहां आया था। यीशु नहीं चाहता था कि समय से पूर्व उसके वैरी उस पर हाथ डाले। इतिहास उनके समय अनुसार नहीं, यीशु के समय अनुसार चलता था। फसा का भोज एक मनोरम अवसर था और यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अनौपचारिक रूप से शांतिपूर्वक भोजन किया था। हमारा प्रभु भोज अत्यधिक औपचारिक होता है। मेरे विचार में यीशु का फसा भोज सहभागिता का एक बहुत अच्छा समय था। इसके बाद वह अपने शिष्यों के साथ गलील सागर के तट पर सुबह का नाश्ता करेगा। मैं आज के कलीसियाई भोज की आलोचना नहीं करता, परंतु कलीसियाई भोज की विलासिता से हटकर मसीह यीशु को केंद्र में लिए हुए सहभागिता करें तो वह एक मसीही आनंद का समय होगा। मित्रों, हम मार्कुस 14 उसके 18 और 19 पद में पढ़ते हैं, और जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूं? मित्रों, वे जानते थे कि वे ऐसा कर सकते हैं। यदि आपको यह बोध नहीं है या नहीं हुआ है तो आप पूर्ण रूप से पतित हैं, कि आप एक पापी हैं, कि आप परमेश्वर से विमुख हो सकते हैं, तो आपने कुछ भी ज्ञान ग्रहण नहीं किया है। दुर्भाग्य से आज कलीसिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें यह बोध नहीं हुआ है कि वे पापी हैं और पथ भ्रष्ट हैं। उद्धार पाए हुए लोगों में भी ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पाते कि वे परमेश्वर से विमुख हो सकते हैं। हम सब यह पूछ सकते हैं, क्या वह मैं हूं? हम मार्कुस 14 उसके 20 और 21 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, उसने उनसे कहा, वह बारहों में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। मित्रों, यहूदा इस्करियोती ने यीशु को पकड़वाया था। यह उसका अपना निर्णय था। यहूदा पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था, क्योंकि वह 3 वर्ष तक यीशु के निकट संबंधों में था, जिसके विषय भजनकार भी अपने भजन में लिखता है, और उसका संकेत यहूदा की ओर ही था, और यहूदा तुरंत वहां से चला गया। यीशु ने इन फसा खाने वालों के लिए एक नया पर्व ठहराया जो नाशवान रोटी और दाखरस का था। फसा यीशु की ओर निहार रहा था जो फसा का मेमना बनकर आने वाला था, परंतु अब प्रभु भोज उसकी मृत्यु को याद कराता है, रोटी उसकी देह की ओर संकेत करती है जो तोड़ी गई थी। मित्रों, याद रखें कि उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई थी। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आप इस अध्ययन का आनंद ले रहे हैं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। मुझे आशा है कि निश्चय ही आप आगे के अध्ययन में भी भाग लेंगे, ताकि आप यीशु के उस पकड़वाए जाने के बारे में जान सकें और अपने जीवन के उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में आमंत्रित करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस जीवित वचन के लिए जिसे आपने हमें दिया है, ताकि पिता परमेश्वर आप अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजे, ताकि वह हमारे पापों के बदले में क्रूस पर चढ़ाया जाए, हमारे बदले में पकड़वाया जाए और हमारे बदले में मारा जाए। प्रभु, हम विनती करते हैं कि हम जो पापी मनुष्य हैं, इस संसार में रहते हैं, हमारे पापों को आप अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा धो दें, हमें क्षमा करें, हमारी गलतियों को हमारे जीवन से दूर करें, ताकि हम पवित्रता का जीवन जी सके, आपसे प्रेम कर सके और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिता सके। इस समय फिर से हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन भाई बहनों के लिए जो अपने आप में अकेलापन महसूस करते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि वो बहुत पापी हैं, उनको कोई क्षमा नहीं करेगा। प्रभु आप उनके जीवन में बात करें ताकि वे जान पाए कि आप उन्हें भी क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि उनके बदले में आपने मृत्यु सहली है, आपने उस लहू को बहाया है जो पवित्र है, जो पापों को धो देता है। प्रभु आप प्रत्येक को आशीष दें। इस समय फिर से बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक को सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा। की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना, हम है तेरे हाथों की रचना। सारा सृष्टि को रक्षा तपाईलाई।